Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
यहाँ तक तो समझ आ जाती, लेकिन सभी को देख के लगे कि ये मैं हूं, ये मेरी ही शक्लें हैं, इसको अभिन्नता कहते। ये ऐसे सुन सुना के नहीं होता, ये तो जीवन में जब तक वैराग्य फलित नहीं होता, ये वाला आनंद नहीं लिया जा सकता कि सब रूपों में मैं ही आनंद ले रहा हूं। अगर किसी के पास अपना हेलीकॉप्टर, अपना एरोप्लेन है तो वो भी मैं ही हूं, और अगर कोई समुद्र में गहरे में गोता लगा के मोती ला रहा है तो वो भी मैं ही हूं, और बड़े से बड़े हीरे जवाहरात का मालिक भी मैं ही हूं। ये वाला जो आनंद है, ये अभिन्नता का आनंद, ये इसी को वेदांत कहते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। तो ये वाली अनुभूति ऐसे नहीं, इसके लिए साधना का मतलब है वैराग्य की। वैराग्य का मतलब यह है कि देखते हुए भी जब आप अपनी शक्ल को ही वहां देख रहे हो कि यह भिन्न तरह की है, और इसमें आपका कोई बस नहीं है कि आप एक ही जैसे रहो, शीशे के सामने जाते ही अलग अलग तरह के हो जाओगे। तो जब एक मामूली शीशे में ही ये ताकत है कि वो आपको भिन्न तरह का दिखला दे, तो उस परम सत्ता की क्या कहने अगर वो आपको विभिन्न लोगों के रूप में दिखला दे। तो ये जितना जितना आप उस परम सत्ता से जुड़ोगे और जितना जितना इस व्यवहारिक संसार से आपका वैराग्य होगा, उतना उतना आप इस अनुभूति के नजदीक पहुंचोगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये अनुभूति नहीं होगी, और जब तक ये अनुभूति ना हो तब तक वेदांत की प्रतिज्ञा पूरी नहीं। और वेदांत की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए, जैसे अभी आपको एक शब्द का अर्थ बतलाया और अद्वितीय का भी, जब तक वो हर समय दिमाग में नहीं रहता, वो नहीं रह सकता, थोड़ी देर के लिए रहता है क्योंकि बाद में अपने संस्कार हैं और कामों में लगना है, कोई इसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है इन बातों की, तो इसलिए वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। तो जो ही किसी को, जैसे अभी आपसे मैं कह रहा था कि जितना मर्जी जोर लगाओ आप कि समाज में एकता बनी रहे, नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा समझाने का ढंग ही ये है कि दूसरे को अपने भाई जैसा समझो। बस जो ही आपने भाई को अलग स्वीकार कर लिया, द्वैत शुरू हुआ। जहां से द्वैत शुरू हो गया, अब कोई चारा नहीं है इसको अद्वैत में बदलने का। जितना इसको बढ़ाते जाओगे, उसकी औलाद, भाई की औलाद, अपनी औलाद, इसका वो बढ़ता जाएगा। ये जितना जितना इधर को जाओगे, अपरा में चलते चले गए, और जितना जितना इसका अपवाद करोगे, ये अध्यारोप है, बढ़ाते चले जाओ, जितना मर्जी इसको बढ़ा लो, रस्सी पे सांप बना लो, माला बना लो, कुछ भी बना लो, वो जितना भी उसका विस्तार करो करते चले जाओ, अंत में लाइट जलानी है और सब खत्म हो गया, रस्सी रह जानी। तो ये वेदांत का एक विशेष अनुचिंतन का ढंग है कि आप इस भ्रम की दुनिया से, अपरा की दुनिया से निकलने के लिए खूब जितना चाहो इसका विस्तार करो, और सिद्ध अवस्था में ये वेदांत की लीला है। जैसे भक्तों की लीला वो है ना कि पहले अकेले कृष्ण, फिर कृष्ण ने बजाई बांसुरी, फिर आ गए, और ये क्या हुआ, इसको अध्यारोप कहते हैं। पहले खाली रस्सी, रस्सी के ऊपर फिर हमने उसका आरोप किया, उसका फिर गोपियों का करो, गोपियों में आठ, आठ की आठ आठ सहेलियां, उनका जितना मर्जी करते चले जाओ, अंत में फिर कृष्ण रह जाना है, सब कोई भी एक नहीं बचेगा, सारी रासलीला के बाद भी, उछल कूद के बाद भी, अंत में फिर कृष्णाय नमः, वहीं पर जाकर रुक जाए। ऐसे ही जब हम रस शास्त्र की दृष्टि से उपनिषदों की व्याख्या या चिंतन करते, तो उसमें एक ही तत्व का ये अध्यारोप है, जितना मर्जी करो, और इसमें एकत्व को छोड़ते नहीं, ये पता होता है कि अध्यारोप है, उसी पर कर रहा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वेदांतियों की लीला, ये बाहर के इसमें कोई रंगमंच नहीं चाहिए, इसमें कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां आप बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, वहीं पर बांसुरी भी है, गोपियां भी हैं, और वो मूल तत्व भी। और जितना मर्जी विस्तार कर लो और घुमा के फिर आप अपना मूल तत्व पर आ जाओ, सारा खत्म, और आप फिर वैसे के वैसे ही। जैसे संगीतज्ञ वाले होते हैं ना, आप कभी शास्त्रीय संगीत वालों को सुनो, भीमसेन जोशी जी का कभी सुनो, पंडित जसराज को सुनो, ये जब शुरू करते हैं तो आम आदमी इनकी शुरुआत को नहीं सहन कर सकता। बहुत सारे लोग तो इनके अलाप में ही उठ के चले जाएंगे। जब तक ये अपना स की ही साधना करते हैं, उतनी देर में तो लोग कीर्तन करने वालों को तो होते ही 10 मिनट हैं, वो तो 10 मिनट में 15 तबले, 10 ढोलक, घड़ा, पीट पाट के नाच कूद के उधर चले। और ये जो क्लासिकल वाले हैं, ये वेदांती, ये पहले स को लेके बैठे रहेंगे, उसी का ही इतना करते रहेंगे कि जब स अच्छी तरह से षडज, जिसका षडज सुदृढ़ हो गया, वो संगीत में फिर कहीं भटक नहीं सकता। इसको षडज साधना कहते। षडज साधना का मतलब क्या? वो एक तत्व जिससे सबका विस्तार, जितना जितना वो परिपक्व होगा, फिर विस्तार होने दो जितना मर्जी। तो ये शास्त्रीय संगीत वाले भी खूब, कई बार तो 1 घंटा उसी पे लगाएं, फिर ये कोई धीरे धीरे बोल बोलने शुरू करें, और करते करते फिर बीच में जब जाके इनके तान तराना इतनी स्पीड पकड़ेंगे कि कोई दूसरा पकड़ भी नहीं सकता। इतना तेजी से इनका नादी धिन्ना चलेगा कि आप उसी में मस्त हो, और सब कुछ करते कराते फिर सम पे आ जाए। सम का मतलब सब सुमेट के, अध्यारोप जितना था, अपवाद, अब वो लाइट जलाई, फिर रस्सी रह गई, फिर बैठे के बैठे, तो उसमें गिनती भी हो गई, संसार भी, जो कुछ चाहो कर लो, लेकिन आनंद सचमुच में वही अक्षय आनंद, जो कभी भी नाश ना होने वाला। इसलिए उस मूल तत्व को जब तक पकड़े रखोगे, तभी ये बात बने, जिसको अदृश्य का पहला ही यहां पर शब्द, एक शब्द भी इसका काफी है, पूरे का पूरा सब कुछ उसी में समा जाएगा। अदृश्य जहां हो, अज्ञेय जहां पर हो, अग्राह्य जहां पर हो, अगोत्रम जहां पर हो, उसको सीधे शब्दों में कहते हैं कि उसकी सीमा कोई नहीं, जो दिखलाई नहीं देता वो सीमा रहित होगा, वो परिछिन्न नहीं हो सकता। परिछिन्न वही होगा जो दिखलाई देगा। अगर अपरिछिन्न तक पहुंचना है, अगर उस तत्व तक पहुंचना है जिस एक को जानकर, क्योंकि उस अपरिछिन्न में सारी परिछिन्नताएं कल्पित, उसमें कुछ है नहीं, उसमें डिवीजन नहीं है, उसमें सारी डिवीजन्स कल्पित हैं, अध्यारोपित हैं। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, उसका आरोप किया गया, ऐसे ही उस एक परम सत्ता में जिसको अदृश्य कहा, उसी में दृश्य की कल्पना की गई। वैसे दृश्य नाम की कोई चीज है नहीं, इसीलिए दृश्य मिटेगा ही और अदृश्य ने कभी मिटना नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहे। वहां से फिर दृश्य बनते चले जाएंगे, वहां से फिर ये सब बनेगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। परा और अपरा विद्या वालों में मुख्य भेद क्या है? अपरा वालों की गिनती बहुत है, मेजॉरिटी उन्हीं की ही, विज्ञान की ही मेजॉरिटी है। भौतिक सुख, क्षणिक सुख, अध्यारोपित सुख, उसी में ही ज्यादा लोगों की रुचि, और वो आसानी, उसका मुख्य कारण यह है कि वो आसानी से उपलब्ध। विज्ञान में जो पदार्थ हैं, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी असलियत को जानने के लिए पदार्थों पर से पर्दा हटाया जाता है। इसी को रिसर्च कहते हैं, लेबोरेटरी में बैठ के एक एक अंग किसी चीज को तोड़ तोड़ के, जैसे पानी का उन्होंने सोच लिया कि यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का काम है, तो पानी को लेके उसकी एक एक बूंद को एक एक को उन्होंने किया होगा, जो भी किया, तरह तरह की मशीनों में डाला, वो किया, फिर अंत में दो गैसेज पकड़ ली कि ये इसको कहते हैं पदार्थ पर से पर्दा हटाना। कोई भी चीज है उसकी जांच करने के लिए, असलियत तक पहुंचने के लिए उसमें से पर्दे हटाते चले जाओ, हटाते हटाते अंतम बात तक पहुंच जाओगे, उसको वो अल्टीमेट ट्रूथ कहते हैं, अंतम सत्य ये। और अभी आज शुरू में आपसे ये बात कही थी कि वेदांत का संबंध अल्टीमेट ट्रूथ से नहीं है, वेदांत अल्टीमेट रियलिटी है पर नजर रखता है, ट्रूथ रियलिटी नहीं होता। सत्य हम सामने देख रहे हैं, एक मां अपने बेटे को मार रही, ये ट्रूथ है, सत्य है कि मां अपने बेटे को मार, लेकिन ये रियलिटी नहीं, ये सत्य है, ये सत नहीं। सत्य और सत में अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो, क्योंकि मां तो स्वयं प्रेम के और कुछ कर नहीं सकती, जो अपेरेंटली आपको मारती हुई दिखलाई दे रही है वो भी उसके प्रेम की एक अभिव्यक्ति, पता नहीं उसके किस अहित से उसको बचा रही है, पता नहीं किस तरह से उसको वो उनसे बचा रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करते हुए एक बहुत सुंदर व्याख्या की उन्होंने अपने अपने ढंग से रसिकों ने, कि भगवान कृष्ण को जो गालियां देती हैं गोपियां कि ये चोर है, ये काला है, ये झूठा है, वो कहते हुए इसलिए गालियां दे रही हैं कि कोई और इसकी तरफ ना जाए, लोगों में ये इंप्रेशन रहे कि ये ऐसा है और हम इसे पकड़ी रहे, तो ये प्रेम की एक विधा कि मेरा ही इसे बना रहे, दूसरा इसको कोई ना, तो दूसरों को बतलाना नहीं, नहीं उसकी विश्वास ना करना, वो बहुत निकम्मा है, उसकी बातों में ना आ जाना, वो तो ऐसा है वैसा है। क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि उनका उसे प्रेम बहुत। अब देखो ये रसिकों की अपनी व्याख्याएं होती, तो ऐसे ही जब वो उसकी बदनामी कर रही हैं तो ये ट्रूथ तो हो सकता है लेकिन रियलिटी नहीं। अपेरेंटली दिखलाई भी देता है कि वो मक्खन लेके दौड़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, किसी का तोड़ रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सत्य। इसलिए सत्य और सत में हम जिसकी बात करते हैं वो सत्य है और उसमें चित और आनंद छुपे रहे और सत्य चित नंतरी ही जाएंगे। जब आप सत्य को पकड़ोगे तो फिर सत्यम के बाद शिवम और सुंदरम पर चले जाओ, उसका संबंध ललित कलाओं से है, हमारे मन वृत्तियों को परिमार्जित करने का भी एक कला कि हमारे हृदय की वृत्तियां सात्विक बने, परिमार्जित बने, संवेदनशील बने, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को महसूस करने वाली बने, पकड़ने वाली बने, उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना आवश्यक है। इसीलिए हम मूर्तियों को भी सुंदर से सुंदर, ड्रेसेस को भी सुंदर से सुंदर, ये जो कुछ भी बनाते, क्योंकि उस सुंदरता से सौंदर्य तक पहुंच सके। हम किसी भी चीज को सुंदर कह लेते, देखो जो भी सुंदर चीज है, अब अपरा वाले क्या करेंगे, विज्ञान, एक फूल देखा आपने या कोई और चीज देखी आपको लगी ये बड़ी सुंदर है, तो कौन सी चीज इसमें सुंदर है, कौन सी चीज को हम सुंदर कह रहे हैं, उसके रूप को, उसके रंग को, उसकी गंध को, उसकी किस चीज को सुंदर कह रहे हैं। तो विज्ञान वाले अगर सौंदर्य को ढूंढना शुरू करेंगे तो वो उस फूल की कांट छांट करेंगे, कांट छांट करके उसको रख सकते हैं, तोड़ मरोड़ के रख सकते हैं, उसमें से जो रसायनें निकले उनके नाम भी लिख के रख सकते हैं, डिब्बी में बंद करके लिख देंगे कि इसमें यह चीज है, इसमें यह, लेकिन उसमें सुंदरता कहीं नहीं आएगी। वो किसी भी एक जगह पर लिख के ये नहीं रखेंगे कि ये सुंदर है। देखो, किसी को आप देख सौंदर्य का संबंध, रूप का संबंध दृष्टि से होता है, रूप का संबंध नजर से होता है, सुंदरता का संबंध नजर से नहीं है। कोई बहुत बढ़िया गीत गाता है तो हमारे मुंह से निकलता है सुंदर, अति सुंदर, क्या था वो जो आपने कहा। जब कभी भी इस जन्म में ना से या और आने वाले जन्मों में जब कभी आपका ध्यान इधर गया कि सुंदर शब्द से मेरा क्या अभिप्राय, क्या मैंने बोला, उसी दिन समझो कि आप जाग पड़े। नहीं तो जीवन तो जी ही जाना है सबने, ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई कमी आएगी, लेकिन जो शास्त्रों ने ये बात कही कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, किस आनंद की अनुभूति हमारा लक्ष्य है, उस आनंद का स्वरूप भी नहीं हम जान पाएंगे, अनुभूति तो बाद की बात है, क्योंकि उसकी अनुभूति तभी होगी जब आप जो बोलते हो उसके प्रति सावधान रहो कि मैंने क्या कहा। सुंदर शब्द और रूप दोनों में बहुत अलग अलग तरह की दोनों बातें। बात असल में यह हो रही थी कि अपरा विद्या वाले तथ्य तक पहुंच जाएंगे, सत तक नहीं पहुंचते। अपरा विद्या की ये विशेषता है, विज्ञान की ये विशेषता है कि विज्ञान वस्तुओं पर से पर्दे हटा देता है और हटाते हटाते अंतम जगह पर पहुंच जाता है कि ये। अब विज्ञान ने जो आपको अंतम चीज दे दी, बाकियों को जरूरत नहीं है पर्दे हटाने की कि वो भी लेके, बाकी उस बने बनाए निष्कर्ष से लाभ उठा सकते। एक वैज्ञानिक ने खोज करके दिन रात की मेहनत करके अंत में उन्होंने एक सीइंग मशीन बना ली, सिलाई मशीन बनाई। बनाने वाला तो बनाते बनाते अंधा हो गया था और उसकी पत्नी भी उसका लाभ नहीं उठा पाई, क्योंकि उसकी पत्नी लोगों के कपड़े सी के अपना गुजारा करती थी। उसके मन में आया मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि इसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, और खोज करते करते बनाते बनाते जिस दिन वो बना पाया तब तक वो स्वयं अंधा हो चुका था, पत्नी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब उनके काम की नहीं। लेकिन वो सिलाई मशीन आज सभी के काम आ रही, पूरे विश्व के काम आ रही। आज किसी को उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूवमेंट उसमें हुई, जिसने बनाई उसका तब रूप कोई और था, आज उसकी तरह तरह के मॉडल आ गए, उसमें कई तरह की सुविधाएं आ गई। सुविधाएं भले ही उसमें कई आ गई, लेकिन जो उसका असली बनाने वाला है वो तो वही रहेगा जिसने बनाई थी, लेकिन उसका अब लाभ सभी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप रिसर्च करो, फिर वहां पहुंचो, फिर ये करो, फिर लाभ होगा, ऐसा नहीं। अब जो पराविद्या है ये इसके विपरीत, पराविद्या में भी पर्दे हटाए गए। बुद्ध ने भी पर्दे हटाए, गुरु नानक देव ने भी हटाए, शंकराचार्य जी ने भी हटाए, और उन पर्दों को हटा हटाकर अंत में सत तक भी पहुंचे, और उन्होंने भी निष्कर्ष भी दिए अपने, गीता के रूप में, ब्रह्मसूत्र के रूप में, उपनिषदों के रूप में उन्होंने नुस्खे भी लिख दिए, निष्कर्ष भी दे दिया अपने, लेकिन फिर भी उनसे फायदा कोई उठा पाए ये संभव नहीं। अगर उनसे ऐसे ही फायदा उठाया जा सकता जैसे सिलाई मशीन ने सबसे उठा लिया है, तो अहम ब्रह्मोस्मि में तो पूरा संसार अब तक ब्रह्म हो गया होता। संसार को तो छोड़ो, जो हम ही पिछले 50 साल से सुन रहे हैं आज तक, ब्रह्म तो क्या सचमुच में मतलब इंसान की और आग जैसे भी गुण नहीं आए हमारे, ब्रह्म की तो बात ही दूसरी। तो उनके इन नुस्खों को रट कर पढ़ कर लाभ नहीं उठाया जा सकता। उसका मुख्य कारण यह है कि जो तत्व जो परम सत्ता, लगता ऐसे है कि परम सत्ता पर से उन्होंने पर्दे हटाए, लेकिन वो परम सत्ता पर से नहीं हटाए, वो पर्दे अपने मन से हटाए, जो उनके मन पर पर्दे पड़े हुए। यहां पर पर्दा वस्तुओं पर नहीं, सत्यता पर नहीं, हमारी आंख पर है। तो यहां पर किसी और का पर्दा हटाना हो तो हटा देंगे, आसान। तो जहां पर्दा ही अपने पर से हटाना है, यहां असल में सत्य को तो कौन पर्दे में ढक पाएगा? परम सत्ता कभी छुपी हुई रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। तो पर्दे हमारी आंखों पर हैं, उनको चाहे वासना का पर्दा कहो, संस्कारों का पर्दा कहो, स्वार्थ का पर्दा कहो, द्वैत का पर्दा कहो, कितने भी उसके नाम आप लेते चले जाओ, विषयों के पर्दे कहो, घुमा फिरा के उसको माया कहो कि ब्रह्म पर हो, वो ब्रह्म पर माया नाम की कोई चीज नहीं होती। वेदांत उसको सही मायनों में स्वीकार नहीं करता, ये वो अध्यारोप अपवाद वाली बात और कोई बात नहीं है, पहले उस पर चढ़ा दो वो। इसलिए वो भी वो वेदांत में भी अगर आप रसो वै सह तैतृय उपनिषद को लेकर ही पूरे उपनिषदों का की व्याख्या करो, जैसा कोई भी जैसा भी आप कोई सत्य की दृष्टि से व्याख्या करता है, कोई चित्त की दृष्टि से व्याख्या करता है, कोई आनंद की दृष्टि से व्याख्या करता है, कोई रस की दृष्टि से भी व्याख्या करता है, ये उसी के नाम है, कोई शब्द भी दे। तो रस की दृष्टि से जब हम उसकी व्याख्या करेंगे, सत्य पर ये पर्दे डालेंगे पहले कि ये पर्दा है, ये है, इसको हटाना है, तो वो ये जो पर्दे डाले जाते हैं, पर्दे ढकने के लिए नहीं होते। रसिकों की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में पर्दा सुंदरता को बढ़ाता है। अगर कोई सचमुच का कोई प्रेमी और प्रेमिका हो तो प्रेमिका का घूंघट आप देखो, शायरो शायरी में जितना घूंघटों पर लिखा गया है किसी पर नहीं लिखा गया। तो घूंघट हुसन को दुगना करता है, छुपाता नहीं। इसीलिए रस शास्त्र से ब्रह्म को पकड़ने वाले उसे कहते, स्वामी राम कहते हैं कि तू छुप जितना छुपना। राम तीरथ के जीवन को अगर पढ़ा हो या आपने उनकी कोई बातें पढ़ना हो, वो कहते हैं मेरी नजर से तू छुप नहीं सकता, छुप जितने पर्दे डाल लेगा मैं तुझे पहचान गया, बदल जितने घूंघट बदलता है। एक रोज मुस्कुरा के नजारा करेंगे हम, डालो नकाब आप उतारा करेंगे हम। वो कहते डाल जितने नकाब डालनी है, मुझे मजा आता है तुझे देखने में, हर चीज में तू है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर तू नहीं है। महफल में शम्मा चांद फलक पर, चमन में फूल तस्वीर रूह अनवरे जाना कहां न। तो चांद के रूप में आ तब भी ठीक है, फूल के रूप में आ तब भी ठीक है, शम्मा के रूप में आ, ये तेरे पर्दे हैं, तू डालता जा मैं उतारना जानता, और जब तक तू डालेगा नहीं मुझे मजा नहीं आना, उसे कहीं दूसरे तक तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए जिनको इधर पर्दे पर्दे कल तक करते रहे, बड़ा मुश्किल है उसको, यूं नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें 15 कदम आगे चलना पड़ेगा, पहले उसमें से शुभ इच्छा सुविचारना तनुमान सा गिनते चले जाओ, सीढ़ियां चढ़ो जितनी चढ़नी। यहां वो कह रहे सारे पर्दे हैं, एक एक उधारने में मजा आ रहा। तो अब ये आपका अपना दृष्टिकोण है कि उस सत्यता को, उस परम सत्ता को मिलने के लिए किस ढंग से आप चलते या कितनी आपको उसकी समझ आई। तो जहां पर अपने से देखो, अगर दूसरों पर से पर्दा हटाने में लगे रहो तो फिर ये विद्या कभी भी हाथ नहीं आनी। ये विद्या का जीवन में सुख नहीं मिलेगा कभी, विद्या को तो छोड़ दो। फिर तो इसमें जीवन में हम कभी आनंद से रह ही नहीं सकते। और पर्दे अपने पर से हटाने शुरू कर दो तो बुराई कहीं नजर आ नहीं सकती। बुराइयां तो अपने अंदर ही हैं सारी, हमारे ही चिंतन में, हमारी ही वृत्तियों में। अगर वो नहीं रही तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आए। बाहर तो केवल प्रक्षेपण है आपकी अंतःवृत्तियों का। जैसी वासनाएं हैं बाहर की दुनिया वैसी नजर आएगी। इसलिए हटाने पर्दे अपने पर से ही, और जितने भी पर्दे अपने पर से हटते चले जाएंगे उतने ही। और देखो फिर जब अपने से ही हटाने हैं तो इसमें इंतजार किसकी, इसमें किसकी इंतजार करें कि अमुक आएगा तो हटेंगे। और अगर आप इस इंतजार में हो कि वो बेटा और बहू आएंगे तो मजा आएगा, तो ये पर्दा और पड़ रहा है, हट नहीं रहा, आपको नजर आ रहा है। अपरा विद्या वालों को नजर आ रहा है कि पर्दा हट रहा, वस्तुतः पड़ रहा है, हट नहीं रहा, क्योंकि वो हर मिलन बिछोड़े में बदलेगा, हर क्षणिक सुख दुख में बदलेगा। ये कभी आज तक इस नियम का अपवाद नहीं हुआ कहीं पर। इसलिए लोगों से कि मिलकर मेरा ये पूरा हो जाएगा, उसके आने पर ये मजा आ जाएगा, वृंदावन जाके मुझे ये मिल जाएगा, जगन्नाथपुरी में उसको ढूंढ लेंगे, वहां ऐसे कर लेंगे, रासलीला यूं कर, ये सब पर्दे पड़ रहे हैं और उठ नहीं रहा। ये आप स्वयं बाहर से लाला कर और अपने ऊपर पर्दे डालते जा रहे। ये जितने जितने उठते चले जाए उतने उतना आत्मानंद शब्द की समझ आएगी। आत्मानंद, आत्मानंद शब्द का अर्थ ही यह होता है कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा को आनंद नहीं मिलना, आनंद को ही आत्मा कहते हैं। ओम
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।